नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सही मायने में विकास के लिए महिलाओं की समान भागीदारी पर बल दिया। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर फिर हमला किया, 2 सैनिकों सहित 12 लोगों की मौत। पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर यात्रा के अधिक विकल्प के लिए एयर इंडिया 9 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 78 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स फाइनल में चीनी ताइपे के लिन चुन ई से हार कर उपविजेता रहे और अहमदाबाद में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 256 रन का लक्ष्य दिया। समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत महिला नेतृत्व वाले विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में आयोजित नारी तू नारायणी महिला विचारकों का राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने नारी शक्ति के हर पहलू को अनुकरणीय बनाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं देश के हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं, चाहे वो कृषि हो या अंतरिक्ष, स्वरोजगार हो या सशस्त्र बल। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार महिलाओं को शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने समाज से महिलाओं के प्रति रूढ़ियों और असमानताओं को दूर करने का भी आग्रह किया।
महिलाएं खेत खलियान से लेकर अंतरिक्ष तक, स्वरोजगार से लेकर सेनाओं तक अपना योगदान दे रहे हैं। खेलकूद के क्षेत्र में हमारी बेटियों ने विश्व स्तर पर नई प्रतिमा स्थापित किए। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों के बल पर अनेक क्षेत्रों में हमारी बहनों और बेटियां ये भागीदारी उनका बढ़ी है।
इसराइल ने आज सवेरे दक्षिणी लेबनान पर हमला तेज कर दिया, जिसमें ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कुद्स फोर्स की लेबनानी शाखा के कमांडरों को निशाना बनाया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों में 2 सैनिक सहित 12 लोग मारे गए हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार इसराइल के ड्रोन ने बेरूत के एक होटल पर हमला किया, जिसमें 4 लोग मारे गए और 10 घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमारी वायु रक्षा प्रणाली ने 16 बैलिस्टिक मिसाइलों और 113 ड्रोन को विफल कर दिया है। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कल पड़ोसी देशों पर हमलों के लिए माफी मांगी है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कड़ा प्रहार करने की धमकी दी है। उन्होंने इस स्तर पर किसी भी तरह के समझौते की संभावना से साफ इनकार कर दिया है। इस लड़ाई में अब तक ईरान में 1230 लोग, लेबनान में 290 से अधिक और इसराइल में 11 लोग मारे जा चुके हैं। 6 अमरीकी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। उधर ईरान की विशेषज्ञ सभा ने आज कहा है कि आयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद देश के अगले सर्वोच्च नेता के चयन पर निर्णय ले लिया गया है। हालांकि चयनित उम्मीदवार के नाम की घोषणा अब तक नहीं की गई है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते उड़ानों की बढ़ती मांग को देखते हुए एयर इंडिया ने 10 से 18 मार्च के बीच 9 मार्गों पर 78 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने का निर्णय लिया है। एयरलाइन ने कहा है कि ये अतिरिक्त उड़ानें दिल्ली से न्यूयॉर्क, लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, एम्स्टर्डम, ज्यूरिख, कोलंबो, माले और मुंबई से लंदन के लिए संचालित होंगी। इसमें कहा गया है कि इन उड़ानों से 17,660 सीटें अतिरिक्त जुड़ जाएंगी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के मद्देनजर कतर के दोहा में 25 से 27 मार्च तक होने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की 3 दिवसीय बैठक स्थगित कर दी गई है। यह बैठक अब अप्रैल में होने की उम्मीद है। बैठक में आईसीसी बोर्ड के निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, समिति के सदस्यों और वरिष्ठ नेतृत्व के शामिल होने की उम्मीद थी। आईसीसी ने कतर को बैठक स्थल के रूप में इसलिए चुना था क्योंकि क्रिकेट के साथ कतर का जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आम चुनाव के लिए 159 निर्वाचन क्षेत्रों के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 6 निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
नेपाल में गुरुवार को हुए चुनाव में 159 निर्वाचन क्षेत्रों से मतगणना का परिणाम आ चुका है। शेष 6 निर्वाचन क्षेत्रों में गिनती जारी है। अब तक फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 122 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त की है और 3 अन्य क्षेत्र में उन्हें बढ़त मिली है। नेपाली कांग्रेस ने कुल 17 सीटें जीती हैं, वहीं एनसीपी ने 7 सीटें जीती हैं। यूएमएल ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है और 3 में उन्हें बढ़त मिली है। आरपीपी ने 1 सीट जीता है और महावीर पुन स्वतंत्र रूप से म्यागदी से विजयी हुए हैं। इस चुनाव में 80% से ज्यादा दावेदारों ने इलेक्शन कमीशन को दिए गए 10,000 रुपए के सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी गवाया है। निर्वाचन नियमों के अनुसार यदि किसी भी उम्मीदवार को 10% से कम वोट मिलता है तो उसे अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट गवाना पड़ता है। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ब्रिटेन में आयोजित 26वीं राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। उन्होंने सदस्य देशों के लिए ठोस लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक सुधारित और भविष्य के लिए तैयार राष्ट्रमंडल का आह्वान किया। श्री सिंह ने वैश्विक दक्षिण की आवश्यकताओं पर भी बल दिया और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपदा प्रतिरोध और आर्थिक विकास में सहयोग पर प्रकाश डाला। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को और अधिक ठोस बनाने तथा ग्लोबल साउथ को नई उम्मीद देने के लिए चीन और भारत को सही रणनीतिक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छे पड़ोसी संबंधों और मित्रता को कायम रखकर विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। पेचिंग में 14वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस के 4थे सत्र के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वांग यी ने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच तियानजिन शिखर सम्मेलन के कारण भारत चीन संबंधों में और सुधार आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज पश्चिमी देशों पर यूक्रेन संकट को भड़काने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि कीव में नेतृत्व परिवर्तन को पश्चिमी देशों के समर्थन ने ही इस संघर्ष को जन्म दिया। पुतिन की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब अमरीका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली शांति वार्ता के अगले दौर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। सऊदी अरब में भारतीय राजदूत डॉ सुहेल एजाज खान ने आज विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल वार्ता आयोजित की। राजदूत ने भारत के लोगों को आश्वस्त किया कि दूतावास जरूरतमंद भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ खान ने प्रतिभागियों को दूतावास की हालिया पहलों के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे चलने वाले नियंत्रण कक्ष की स्थापना शामिल है। वार्ता के दौरान समुदाय के प्रतिनिधियों ने दूतावास की सक्रिय पहल और सहभागिता की सराहना की। प्रशांत महासागर में आज 6 तीव्रता का भूकंप आया। भारत के भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भारतीय समयानुसार दोपहर 2:58 पर पृथ्वी की सतह से 130 किलोमीटर अंदर भूकंप आया। विभाग के अनुसार इंडोनेशिया में भी झटके महसूस किए गए, हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। श्रीलंका ने दक्षिणी समुद्री तट से एक स्थानीय मछली पकड़ने वाली नाव से नशीले पदार्थों की बड़ी खेप जब्त की है। श्रीलंका नौसेना के अनुसार 7 मार्च की देर रात नाव को हिरासत में लेने के बाद उसमें 102 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की गई। नौसेना और जांच टीमों ने तलाशी के दौरान लगभग 900 ग्राम कोकीन भी बरामद की है। बर्मिंघम में लिन चुन ई ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज लिन ने लक्ष्य सेन को 21-15, 22-20 से हराया। लक्ष्य इस प्रतियोगिता में दूसरी बार उपविजेता रहे हैं। सेमीफाइनल में कल लक्ष्य ने विक्टर लाई को हराया था। और अहमदाबाद में 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 256 रन का लक्ष्य दिया है। संजू सैमसन ने सर्वाधिक 89 रन की पारी खेली, वहीं अभिषेक शर्मा ने 52 और ईशान किशन ने 54 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 14 ओवर में 6 विकेट पर 134 रन बनाए हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में भारत चौथी बार जबकि न्यूजीलैंड दूसरी बार खेल रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सही मायने में विकास के लिए महिलाओं की समान भागीदारी पर बल दिया। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर फिर हमला किया। हमले में 2 सैनिकों सहित 12 लोगों की मौत। पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्षों के मद्देनजर यात्रा के अधिक विकल्प के लिए एयर इंडिया ने 9 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 78 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने का फैसला किया। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स फाइनल में चीनी ताइपे के लिन चुन ई से हारकर उपविजेता रहे। और अहमदाबाद में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 256 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।